स्वरूप रीतिबद्ध रचना मुक्तक ही क्यों रही, इसका भी कारण राजदरबार या राजसभा ही है। दरबार में जो रचनाएं सुनाई जाती हैं उनके लिए कथाबद्ध प्रबंधों से काम नहीं चलता। थोड़े समय के लिए जो रचना रसमग्न करने वाली हो वही वहाँ काम की हो सकती है। उसका मुक्तक होना बहुत आवश्यक होता है। आधुनिक युग में भी सभा सम्मेलनों में प्रबंध काव्य नहीं पढ़े जाते, मुक्तक गीत प्रगीत ही चलते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा की कविता के लिए यह अपेक्षित होती है कि उसमें कला पक्ष प्रधान हो। जिस रचना में चमत्कारातिशय न होगा वह सभा सदों को अधिक रंजित नहीं कर सकती। संप्रति कवि सम्मेलनों में जो रचनाएं पढ़ी सुनी जाती हैं उनमें भी चमत्कार ही अधिक होता है। सभा सम्मेलनों में काव्य गंभीरता के लिए अवकाश कम रहता है। इसी से या तो कलापूर्ण रचनाएं विशेष अभिनंदित होती हैं या हास्य रस की हल्की रचनाएं। मध्य युग के दरबारी कवियों ने श्रृंगार की जितनी रचनाएं की उतनी ही हास्य की नहीं। इन कवियों की हास्य रस की रचनाएं दो ही चार मिलती हैं। इसका एक कारण तो यह था कि हास्य रस हल्का रहा और शानदार कवि भड़ौवा लिखना पसंद नहीं करते थे। दूसरी बात यह कि सभासदों का काम भाणों से चल जाता था। प्राचीन दरबारों में जिस प्रकार विदूषक रहते थे उसी प्रकार मध्यकालिक दरबारों में भाण अपना घोड़ा छोड़ते दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में भाणों का उपयोग कम हो गया है, इसलिए कवि सम्मेलनों में हास्य रस की कविता की अधिक मांग तर्कसंगत है। सांप्रतिक सभी सम्मेलनों में हास्य रस की रचना किस स्तर पर पहुंच गई है उसे समझदारों को बतलाने की आवश्यकता नहीं। यह सब लिखने का प्रयोजन इतना ही है कि कविता दरबारों या सभा सम्मेलनों में पहुंचकर काव्य की प्रकृत गंभीरता को सुरक्षित नहीं रख पाती। मध्ययुग की दरबारी रचना भी इसी स्थिति को प्राप्त होने लगी। वह मुक्तक ही रही, उसमें चमत्काराधिक्य हुआ और उसका स्तर गिरने लगा। फिर भी भारतीय परंपरा ने उसे उतना अधिक विकृत नहीं होने दिया। यद्यपि काव्य का लक्ष्य जहाँ चमत्कारातिशय हो जाता है वहाँ वह व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करने का अधिकाधिक के अवसर प्राप्त करके सामाजिकता से दूर हो जाती है, तथापि हिंदी की मध्य युग की कविता ने समाज का ध्यान एकदम छोड़ ही नहीं दिया। फलस्वरूप नायक नायिका भेद की रचना में सामाजिक मर्यादा का विचार करके राधा और कृष्ण को ही आलंबन स्वीकार किया गया। श्री कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसे लोग संगठित हो गए हैं जिसके कारण श्रृंगार के लिए अनेक रूपों की कल्पना उसमें की जा सकती है। रीतिबद्ध कविता के तो वे आलंबन हुए ही, रीतिमुक्त स्वच्छंद कविता के भी वे ही आलंबन हुए। गोपी कृष्ण के स्वच्छंद प्रेम के कारण रीतिमुक्त स्वच्छंद कविता भी उसमें पर्यवसित हो सकी। यही क्यों, स्वच्छंद कवियों में रहस्य की जो प्रवृत्ति सूफी रहस्य भावना के प्रभाव से जगी थी उसका भी पर्यवसन श्री कृष्ण के चरित्र में ही हो गया और भारतीय काव्य परंपरा में रहस्यवाद के लिए अनवकाश की घोषणा करता गया। जो लोग आधुनिक रहस्यवाद को भारतीय परंपरा में खोजने निकलते हैं उन्हें श्रृंगार काल के रहस्योन्मुख स्वच्छंद कवियों के इस रूप का भी स्मरण कर लेना चाहिए। फारसी की प्रेरणा से परकिया भाव की जो अतिशयता हिंदी कविता में हुई उसके लिए भी कृष्ण चरित में पूरा मैदान मिला। भक्ति संप्रदायों के स्वकीय भाव और परकीय भाव दोनों की उपासनाएं दिखाई पड़ी और हिंदी काव्य परकीय परक रचनाएं करके तथा उन्हें गोपी कृष्ण से संबद्ध कहकर सामाजिक लांछन से बच गया। नायक नायिका भेद के ग्रंथों में परकीय भाव का साहित्य में ग्रहण सर्वत्र मध्यम कोटि का और बुरा ही कहा गया है। देव ने स्वकीय का वर्णन वाच्य, परकीय का लक्ष्य और सामान्य या गणिका का व्यंग्य ही रखना उचित माना है। अर्थात स्वकीय का वर्णन काव्य में प्रत्यक्ष करना चाहिए, परकीय की वर्णन उपलक्षण के रूप में लाना चाहिए और सामान्य का संकेत के रूप में। इन तीनों प्रकार के वर्णनों का क्रमशः अभिधा लक्षणा और व्यंजना मानकर उन्होंने लिखा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उन्होंने यह जो नवीन उल्टी बात कही है उसे शब्द शक्ति संबंधी उनकी स्थापना मान लेने के कारण हिंदी आलोचना में भारी भ्रांति उत्पन्न हो गई है। कहने का तात्पर्य यह कि सामाजिकता के नाते श्रृंगार काल के रीतिबद्ध कवि भारतीय काव्य मर्यादा का विचार रखकर रचना करते थे। दरबारी कविता में नाद का विधान कुछ अधिक अपेक्षित होता है। हिंदी के पढ़ंत कवि सम्मेलनों में कवित्व सवैयों को राग से पढ़ने का विधान तो है ही, दो बार पढ़ने का भी विधान है। सवैया छंद का नाम तक इस बात को सूचित करता है कि कोह रचना चार चरण की नहीं प्रत्युत पांच चरण की होती। संपादिका से ही सवैदा शब्द निकल पड़ा है। पुराने हस्तलेखों में सवैया छंद पांच पंक्तियों में लिखा जाता था, उसका चौथा चरण सबसे पहले आता था और फिर उनके चारों चरण लिखे रहते थे, या सवैया के चार चरण लिखने के अनंतर उसका पहला चरण अंत में फिर से लिख दिया जाता था। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सवैया छंद में नाद तत्व की योजना हिंदी के अन्य छंदों की अपेक्षा सबसे अधिक है। मध्य युग में हिंदी कवियों के दो ही अति प्रिय छंद दिखाई देते हैं, सवैया और दोहा। ये दोनों हिंदी के अपने छंद हैं और अपभ्रंश काल से चले आ रहे हैं। दोहा अपभ्रंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रिय छंद है। यहाँ तक कि दोहा कहने से ही अपभ्रंश कविता का संकेत मिल जाता है। श्लोक कहने से जैसे संस्कृत की रचना लक्षित होती है और गाथा कहने से प्राकृत की, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश की। किंतु दोहे में उतना अधिक नाद सौंदर्य नहीं है जितना सवैये में। फारसी की बहरों और उर्दू के शेरों में भी नाद सौंदर्य वैसा नहीं जैसा सवैये में होता है। बहर या शेर नाद की दृष्टि से दोहे की प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं, सवैये की नहीं। जिन हिंदी कवियों को दो पंक्तियों वाले छोटे आकार के शेर की प्रतिद्वंदिता करनी होती थी, वे दोहा सामने लाते थे और उसमें अपनी पूरी कारीगरी दिखाया करते थे। किंतु जो नाद सौंदर्य द्वारा भी लोगों को अधिक प्रभावित करना चाहते थे वे सवैया सामने करते थे। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सवैये के नाद माधुर्य के समक्ष शेर ठहर नहीं सकते थे और संगीत के बल पर हिंदी के कवि मैदान मार लिया करते थे। सभा सम्मेलनों में कविता के लिए नाद या संगीत अथवा गलेबाजी कितने काम की होती है कवि सम्मेलनों का श्रोता तो जानता ही है, कवि भी भलीभांत समझते हैं। जिन कवियों के गला नहीं होता या जो गाना नहीं जानते वे अपनी अच्छी से अच्छी कविता मोटे गले और बेसुरे राग से पढ़कर किस प्रकार अभिनंदित होते हैं इसे समझदार लोग जानते हैं। आधुनिक युग के कुछ कवि उस्तादों से बाकायदा गाने की तालीम लेकर अखाड़े में जब उतरे तब सफल हुए हैं। इसी से संगीत का या नाद सौंदर्य का महत्व दरबार या सभा सम्मेलनों में स्पष्ट हो जाता है। यह सब कहने का तात्पर्य यह कि हिंदी के मध्ययुगीन रीतिबद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं समय के अनुकूल परिस्थितिवश और अपने साहित्य की मान रक्षा के विचार से की थी। उनका मुक्तक कला प्रधान और संगीत प्रभृत होना अनिवार्य था। उन्होंने जो अनेक प्रकार की उद्भावनाएं की हैं उसके लिए वे समय की गति से विवश थे। जानबूझकर काव्य का स्वरूप उन्होंने विकृत नहीं किया है। रही घोर श्रृंगारिकता की बात, सो विपरीत रति और सुरतांत के वर्णन संस्कृत और प्राकृत परंपरा में पहले ही चले आ रहे थे। फिर भी ऐसे वर्णनों के नाम पर जितनी अधिक इनकी कुत्सा की जाती है उतने अधिक परिणाम में उनके ऐसे वर्णन मिलते नहीं। इस युग में यदि रीतिबद्ध काव्य के आर्थिक आधार की चर्चा न की जाए तो बात कदाचित अधूरी समझी जाएगी, इसलिए थोड़ा इसका विचार भी लगे हाथों कर लेना चाहिए। रीतिबद्ध काव्य करने वाले दरबार से वृत्ति पाते थे और उस वृत्ति के कारण उन्हें आश्रयदाता के रंजन के लिए उक्त प्रकार की रचनाएं करनी पड़ती थी। पर ऐसा न समझना चाहिए कि यह काव्य अर्थ के लिए सचमुच बिख ही गया था। बिहारी ने जयपुर नरेश को अपनी कविता के बल से घोर श्रृंगार से उबारा था, यह जगत प्रसिद्ध है। इन कवियों के अर्थ के लिए अपने व्यक्तित्व का, अपने आदर्श का, अपनी प्रतिभा का सर्वथा विनाश ही कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। अपने आश्रयदाताओं की वैयक्तिक प्रशंसा या विरदावली इन्होंने दो ही चार छंदों में गाई हैं। पूरा काव्य उन्हीं के बखान में रचा हो ऐसा नहीं। जो चाटुकारिता वर्तमान स्वतंत्र भारत के राजकीय मंत्रियों को अभिनंदन ग्रंथ समर्पित करने में हिंदी के कविजन्य और पंडितजन्य महानुभावों के द्वारा देखी जा रही है, उसका श्रोतांश ही उनमें मिल सके हैं। दरबारी मनोवृत्ति संप्रति आज कहीं अधिक है और राजनीति के नाम पर साहित्य न्यौछावर हो रहा है। रीतिबद्ध कवि नीति गलित नहीं थे और न वैसा करके धर्म बटोरना चाहते थे। सभ्यता अपने विलास के साथ सच्चाई छिपाने के जितने अधिक साधन और मार्ग आज निकाल चुकी है, उस समय नहीं थे। जितने थे भी उनकी उपयोग कोई कवि कुटिलतापूर्वक नहीं करता था। उन्होंने जो कुछ किया या जो कुछ लिखा, प्रत्यक्ष किया और लिखा। इस प्रत्यक्षवादिता के लिए वे सांप्रतिक राजनीति संकलित कवि पुंगों और साहित्यिक से अधिक प्रशंसा के भाजन हैं। वे अर्थ की अपेक्षा राज्यसभा में बड़प्पन पाने के अभिलाषी थे। वे स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर समाज सिद्ध का ही ध्यान रखते थे। रीतिबद्ध काव्य हिंदी की श्रृंगार की उक्तियों का जैसा भारी भंडार सौंप गया है, उसमें कूड़ा करकट या केवल अशिष्ट या अश्लील वर्णन नहीं है, उसमें श्रृंगार की प्रसूत परिणाम में अच्छी अच्छी उक्तियां भी संचित हैं, जिसकी संस्कृत क्या किसी भी साहित्य में उपलब्धि नहीं हो सकती। इसे उसकी कड़ी आलोचना करने वाले महानुभावों ने भी स्वीकार किया है।